Recording in progress.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. तो इस क्लास में हम सूरह माईदा की तफसीर पढ़ा करते हैं और हमारी रेफरेंस बुक है मआरिफुल कुरआन हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह की मुरत्तब की हुई मशहूर जमाना तफसीर है। जमाने के हालात के एतबार से है क्योंकि ये हमारे जमाने के बहुत करीब लिखी गई है, तो जाहिर है कि इसके अंदर जो है वो हमारे जमाने से ज्यादा मुतअल्लिक बातें हमें मिलती हैं। तफसीर की बहुत सारी किताबें हैं, कई सौ किताबें तफसीर की हमारे तारीख में लिखी गई हैं और उनमें बहुत मशहूर मशहूर जो है वो तफसीर रूहुल मानी भी है, तफसीर इब्ने कसीर भी है और बहुत सारी दूसरी तफासीर हैं, लेकिन वो चूंकि बहुत पहले लिखी गई हैं तो उनमें फिर उनके अपने अदवार के जो अहवाल थे ना, तो उनसे ज्यादा मुताबिकत नजर आती है। ठीक है, अगरचे कि कुरान मजीद की तशरीह जो है वो तो अल्फाज की तरशी तो आपको सब में ही मिल जाएगी। अगर उर्दू तर्जुमा है तो वो आपको इब्ने कसीर में भी मिल जाएगा, अंग्रेजी तर्जुमा इब्ने कसीर के तर्जुमे में भी मिल जाएगा, लेकिन होता है ना कि भाई इस वक्त क्या हालात चल रहे हैं, तो उसमें हम कुरान मजीद के इस वाली आयत से कैसे रहनुमाई हासिल कर सकते हैं वो आपको मुश्किल हो, या ये कि फिर खुद ही आपको मनाना पड़ेगा, जो कि हर एक के बस की बात नहीं होती कि वो खुद से जो है वो तदबीक कर सके और को रिलेट कर सके मौजूदा हालात को कुरान मजीद की आयात से या जो है वो किसी भी इल्म की किताब से। बहरहाल तो हम अल्लाह की तौफीक से मआरिफुल कुरान ही को पढ़ा करते हैं और इसमें हम आपसे ये भी तवक्को रखते हैं कि आप अपने सामने एक तो किताब को भी रखें, अगर असल किताबी शक्ल में प्रिंटेड शक्ल में मौजूद है तो सबसे अच्छा वही है, तो उसको सामने रखें मारुफुल कुरान की जिल्द नंबर 3 को, और उसी के ऊपर ही बेशक हाशिए में नोट्स वगैरह बनाते रहें या कीवर्ड्स कम से कम लिख लें। और अगर ऐसा नहीं है, आपके पास असल किताब नहीं है, तो ये जो आपके साथ हमने स्लाइड्स शेयर करी हैं व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, जो के क्लास के दौरान आपके स्क्रीन के ऊपर भी शेयर की जाती हैं, तो उन स्लाइड्स को अपने पास प्रिंट कम से कम कर लें। ठीक है, और उनको बहैसियत किताब के अपने सामने रखा करें और उसके ऊपर कुछ अपनी तरफ से भी नोट्स वगैरह या हाईलाइट या अंडरलाइन वगैरह कर लिया करें। ये इल्म के कुछ तकाजे हैं जो कि पूरा करने से ही हमें इल्म नाफे नसीब होता है, वरना फिर इल्म जो है ना वो हमारे लिए नफा बख्श नहीं होता। ठीक है, नफा बख्श फायदा मंद होने के लिए इल्म के कुछ तकाजों को पूरा करना जरूरी है। ठीक है, ये इल्म के आदाब में भी आता है और सिंपल रिक्वायरमेंट्स में भी आता है। ठीक है, तब हमें इससे फायदा होगा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि हम अपना वक्त भी लगा रहे हों और कुछ अल्फाज भी हमारे कानों में पड़ जाएं लेकिन वो हमारे लिए फायदा मंद बनने की बजाय नुकसानदेह बन जाए, क्योंकि सुन तो लिया हमने लेकिन हमने समझने की कोशिश नहीं करी, तो ये हम उसकी नाकदरी के मुर्तकिब होए और नाकदरी के ऊपर सजा मिलती है। ठीक है, या हमने बात को समझ तो लिया लेकिन कुछ भी याद ना रखा, तो जब याद नहीं रखा तो फिर उसके ऊपर अमल कैसे करेंगे? तो इल्म हासिल हो गया लेकिन अमल करने की कोशिश तक नहीं करी क्योंकि याद ही कुछ नहीं है, तो फिर ये इल्म हमारे खिलाफ हुज्जत बन जाएगा, ये इल्म हमारे खिलाफ हुज्जत बन जाएगा। ठीक है, यानी सजा के लिए अल्लाह ताला इसको बतौर एक्सक्यूज के इस्तेमाल करेंगे कि तुम्हें ये बात पता थी तो तुमने उस पर अमल करने की कोशिश क्यों नहीं करी? ठीक है, तो इस वजह से हमारा काम है कि हम आपको ये तकाजे या आदाब वगैरह वक्तन फवक्तन याद कराते रहें। अब हम आपको पकड़ करके तो उनके ऊपर अमल नहीं करवा सकते, ये तो आपके और आपके रब के माबैन मामला है, आप जाने और अल्लाह ताला जाने। ये आप करेंगे तो आपको फायदा होगा, और आप नहीं करेंगे तो फिर आपको मैंने बता ही दिया है बात। ठीक है, कुरान का हमारे ऊपर हक है कि हम उसकी तिलावत भी करें, हम उससे हिदायत भी हासिल करें, और अगर हम ये काम नहीं करेंगे बल्कि उसको या तो बिल्कुल ही इग्नोर करते रहेंगे, या ये कि हम उससे हिदायत हासिल करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो फिर अल्लाह ताला ने इसके ऊपर बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल फरमाए, अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिहिम अक्फालुहा, कि ये लोग कुरान मजीद में तदब्बुर नहीं करते, क्या इनके दिलों के ऊपर ताले पड़े हुए हैं? तो जो कुरान मजीद में तदब्बुर नहीं करता, सोचता समझना की कोशिश नहीं करता, तो अल्लाह ताला ने उसको ऐसे करार दिया कि जिसके दिल के ऊपर ताला पड़ा हुआ है। ठीक है, और ये अल्लाह ताला की नाराजगी ही जाहिर करती है ये बात, ये रजामंदी तो जाहिर नहीं करती। ठीक है, तो वी रियली डोंट हैव एन ऑप्शन। ठीक है, वेरी सिंपली स्पीकिंग, वी रियली डोंट हैव एन ऑप्शन। ठीक है, यानी ये नफली काम नहीं है कि जिसको नहीं किया तो कोई बात नहीं। ठीक है ना, तो बहरहाल इसके इस तमहीद के साथ या इस याद दहानी के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि इन आयात में बनी इसराइल का तज़किरा अल्लाह ताला ने फरमाया है, या उनको हमने नेमतें भी याद दिलवाई अपने नबी मूसा अलैहिस्सलाम के वास्ते से, और फिर उन तक ये अपना पैगाम पहुंचाया कि भाई ये जो शहर है, अर्ज़ मुकद्दस है, तुम्हारे लिए लिख दिया गया है, बस तुम वहां पर दाखिल हो जाओ। तो उन्होंने फिर उससे इनकार किया, और मूसा अलैहिस्सलाम तो जो है ना, उन्होंने कह दिया कि जी इज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। तो उसमें हमने पिछली दफा में पढ़ लिया था कि मूसा अलैहिस्सलाम के एक दिल के ऊपर क्या गुजरी होगी। क्लास कैसे करेंगे वो, कारी साहब का जो लिंक है वो तो उसके लैपटॉप जिस पर आप दूसरा उसका ये ले लो, एक मिनट सर, एक ये ले लें क्योंकि अब उसकी बैटरी। हाँ, तो उनके दिल पर क्या गुजरी होगी ये हम इसका तस्वर भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो नबियों के दिल सबसे ज्यादा नरम होते हैं, सबसे ज्यादा फिक्रमंद होते हैं वो अपने उम्मतियों के लिए। ठीक है, हमारे जैसे दिल उनके नहीं होते, सख्त पत्थर या बेफिक्रे किस्म के, उनके तो बहुत ज्यादा फिक्रमंद दिल होते हैं। तो एक तो उनके दिल का हाल यह था, और फिर दूसरा उन्होंने कितनी मेहनतें करी थी, कितने जतन किए थे इन लोगों के लिए, लेकिन आगे से उन्होंने कैसा तड़फा करके जवाब उनको दिया। मगर चूंकि वो अल्लाह के उलुल आजम रसूल थे और अल्लाह से मोहब्बत करने वाले थे, तो कोहे इस्तकामत बने हुए अपनी धुन में लगे रहे। ठीक है, उन्होंने अपना काम छोड़ा नहीं, दुख बेशक उनको हुआ, इससे कोई जो है वो इनकार नहीं कर सकता कि उनको दुख नहीं हुआ होगा, लेकिन उन्होंने काम नहीं छोड़ा। क्यों? इसलिए कि वो काम तो अल्लाह की रजा के लिए कर रहे थे, अल्लाह की मोहब्बत में कर रहे थे। ठीक है, तो बनी इसराइल ने उनके साथ जो ये हरकत करी, हालांकि वो सोहबत में भी थे, वो उनको अल्लाह का रसूल भी मानते थे, लेकिन हुक्म मानने से इनकार क्यों कर दिया, वादे के ऊपर एतमाद करने से इनकार क्यों कर दिया, इसकी वजूहात हम पीछे पढ़ चुके हैं कि उनकी निस्बत जो थी ना वो मजबूत नहीं थी, उन्होंने अपनी ऊपर से निस्बत मजबूत करने पे मेहनत नहीं करी थी। ठीक है, बल्कि उनकी निस्बत जो है ना वो या तो अपने साथ के लोगों के साथ मजबूत थी, हॉरिजॉन्टल निस्बत, पीयर टू पीयर निस्बत, कनेक्शन, ताल्लुक वो ज्यादा मजबूत था। जब भी मूसा अलैहिस्सलाम उनको मना कर रहे हैं कि अपने कौम के लोगों को मत बताना कि वो कैसे अमालका थे और कितने मजबूत थे, लेकिन इन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी, बल्कि अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, अपने कबीले के लोगों को बता दिया। इसका मतलब यह है कि कबीले वालों के साथ इनकी निस्बत ज्यादा मजबूत थी, मूसा अलैहिस्सलाम के साथ इनकी निस्बत कम मजबूत थी। ठीक है, तो इससे हमें उसूल मिल गया, हमें कुल्लिया मिल गया
कि अगर हम भी ऐसी गलती करेंगे कि हम ऊपर से नस्बत मजबूत बनाने की बजाय अपने बराबर वालों के साथ नस्बत ज्यादा मजबूत बना लेंगे, तो कल को हमारे ऊपर ऐसी कोई आजमाइश आएगी तो हमारा भी यही रिएक्शन होगा। फिर हमें नेकों की सोहबत भी काम नहीं आएगी, फिर हमें अपनी इबादत ही भी काम नहीं आएगी अगर नस्बत मजबूत करने के ऊपर मेहनत नहीं करी होगी। ठीक है, तो ये पूरा एक एरिया है सीखने का कि भाई निस्बत क्या चीज होती है, निस्बत को कैसे मजबूत किया जाता है, निस्बत कैसे जो है वो कमजोर हो जाती है। ठीक, तो वो हमारे मशाइख ने खोल खोल करके हमें समझाया है, बयान किया है। हमारे हजरत की बेहतरीन बहुत ही मुख्तसर सी किताब है रहे सलामत तुम्हारी निस्बत, उस किताब के अंदर हजरत ने बहुत ही आसान तरीन अल्फाज में ये बात समझा दी है कि निस्बत कैसे मजबूत करनी है और उसको कमजोर करने वाली बातें क्या होती हैं। अब हम खुद ही जो है वो पढ़ के समझ करके अमल करने की कोशिश ना करें तो किसी दूसरे का कसूर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारा अपना कसूर है। ठीक है, तो अब इन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम के पास हालांकि मोजज़ात भी देखे थे, अल्लाह की मदद आते हुए भी देखी थी, फिर भी जो है ना ये मारे गए इस मौके पर। क्यों? इसलिए कि इनकी निस्बत जो थी वो एक तो बराबर वालों से ज्यादा मजबूत थी, तो वो तो हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन ऐसा इन्होंने क्यों जवाब दिया? तो इससे ये पता चलता है कि इनकी निस्बत जो है वो जो सबसे ज्यादा मजबूत निस्बत थी ना, वो इवन अपने बराबर वालों के साथ भी नहीं थी। ऊपर वालों के साथ तो कच्ची निस्बत थी, नबी के साथ अल्लाह के साथ तो कच्ची निस्बत थी, इवन बराबर वालों के साथ भी इतनी मजबूत निस्बत नहीं थी। असल मजबूती इनकी निस्बत की किसके साथ थी? वो नीचे वालों के साथ थी, राइट? ना ऊपर वालों के साथ, ना बराबर वालों के साथ, बल्कि सबसे मजबूत निस्बत इनकी किसके साथ थी? नीचे वालों के साथ। नीचे कौन होता है? इंसान के नीचे कौन होता है? जो इंसान से कमतर होता है। इंसान से कमतर कौन होता है? शैतान। ये जिन्नात जो है ना, शैतान जिन्नात में से है ना, तो जिन्नात को अल्लाह ताला ने इंसान से कमतर बनाया है। तो जब इंसान की शैतान से नस्बत ज्यादा मजबूत हो जाती है, तो दरअसल उसकी अपने नीचे वालों के साथ नस्बत ज्यादा मजबूत हो जाती है। कमतर लोग, कमतर मखलूक से उसकी नस्बत ज्यादा मजबूत हो जाती है। और इसी तरीके से इंसान का नफ्स जो है वो भी कमतर मखलूक है। ठीक है, ये जो नफ्स अम्मारा होता है ये कमतर मखलूक है, वो भी शैतान के साथ गठजोड़ करके, वो भी कोई बुलंद चीज नहीं होती। बुलंद तो वो उस वक्त बनता है जब वो नफ्से मुतमईना में तब्दील हो जाए, तब वो बुलंद चीज बन जाती है, वरना तो वो कमतर चीज है ना। ठीक है, उम्मीद है कि थोड़ी सी इस ज्योमेट्री के साथ आपको उसूल ऐसा मिल गया है कि जिससे आपके लिए जो है ना बात को समझना और याद रखना आसान हो जाएगा कि भाई ना तो नीचे वाले के साथ अपनी नस्बत को मजबूत करना है, और बराबर वालों के साथ नस्बत को मजबूत तो कर सकते हैं, इजाजत है, लेकिन ऊपर वालों के मुकाबले में ज्यादा नहीं। ठीक है, किसी को कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। अच्छा, आगे हजरत ने लिखा कि कौम की मुसलसल अहद शिकनी और वादा फरामोशी से आजिज आकर अपने रब के सामने सिर्फ इतना अर्ज करते हैं, इन्नी ला अम्लिकु इल्ला नफ्सी व अखी, यानी मुझे तो अपनी जान और अपने भाई के सिवा किसी पर इख्तियार नहीं है। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहि सलाम को वो ही कहा था ना कि तुम इन लोगों से कहो कि वो चले, तो उन लोगों ने तो मूसा अलैहि सलाम को जवाब दे दिया। तो अब मूसा अलैहि सलाम ने अल्लाह ताला से इल्तिजा करी कि अल्लाह इन लोगों के ऊपर मेरा बस नहीं चलता। ठीक है, क्योंकि नबी जो है ना वो इंसानों को मार मार करके जिहाद नहीं करवा सकते, वो तो जिहाद के लिए, जिहाद एक ऐसा काम है कि उसके लिए जो है ना वो उनकी अपनी रजामंदी, ये एक ऐसा क्रिटिकल काम होता है कि उसमें यानी जाहिरी तौर पर भी आप किसी से किसी को किसी से लड़वा नहीं सकते। ठीक है, नमाज तो फिर भी जाहिरी तौर पर आप पढ़वा सकते हैं, ये भी नमाज नहीं पढ़ेगा तो सजा मिलेगी। ठीक है, तो इस वजह से नमाज के जो तारिक होते हैं, तो एक इस्लामी प्रॉपर इस्लामी हुकूमत के अंदर नमाज के तर्क करने के ऊपर बाकायदा सजा दी जाती है, उसको कैद करने का भी हुक्म है। जिसने नमाज को जो है वो को की अदायगी जो है वो तर्क करी हुई है, तो उसको कैद करने का हुक्म है। ठीक है, लेकिन ये आप पीस के हालात में यानी अमन व अमान के हालात में अपने मुल्क में तो ये काम कर सकते हैं, लेकिन मैदानी जंग के अंदर आप किसी को डंडे से मार मार करके उससे लड़ाई नहीं करवा सकते। ठीक है, तो मूसा अलैहि सलाम ने ऐसे अपनी आजजी का इजहार किया कि मेरे पास, मेरे तो बस में ये लोग नहीं है। लेकिन साथ उन्होंने एक और भी बात करी कि मेरे बस में तो सिर्फ मेरा नफ्स और मेरा भाई है। ठीक है, अब उसकी एक एक्सप्लेनेशन तो हजरत ने यहाँ पे लिख दी है, वो हम पढ़ लेते हैं पहले कि कौम अमालफा पर जहां इस तरह से सर किया जाए, यहां ये बात भी काबिल गौर है, कौम बनी इसराइल में से, यानी उन्होंने कहा कि मुझे तो, मेरे पास तो बस नहीं है, बस मेरा बस नहीं चलता अपने और अपने भाई के अलावा, तो कौम मालका पर जिहाद की मुहिम को फिर किस तरह से मैं सर करूं, मेरा तो कोई यहाँ पे हेल्पर ही नहीं बन रहा। तो यहां ये बात भी काबिल गौर है, कौम बनी इसराइल में से कम अज कम दो सरदार, यूशा बिन नून और कालिब बिन यूकन्ना, जिन्होंने पूरी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इत्तेबा का सबूत दिया था और कौम को समझाने और सही रास्ते पर लाने में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मुसलसल कोशिश की थी, इस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनका भी जिक्र नहीं किया, बल्कि सिर्फ अपना और हजरत हारून अलैहिस्सलाम का तस्करा फरमाया। ठीक है, तो उन दोनों का क्यों नहीं तस्करा किया कि मेरे बस में तो ये तीन लोग हैं, मेरा नफ्स है और ये तीन और लोग हैं। तो इसका सबब फरमाते हैं कि वही कौम बनी इसराइल की अहद शिकनी और नाफरमानी थी कि सिर्फ हजरत हारून अलैहिस्सलाम बवजह नबी व पैगंबर होने के मासूम थे। ठीक है, क्योंकि उनको नबूवत मिल चुकी थी, यूशा बिन नून को नबूवत बाद में जाकर के मिलनी थी, अभी नहीं मिली थी। ठीक है, तो जिसको नबूवत मिल गई थी ना, तो वो फिर मासूम डिक्लेयर हो चुके थे अल्लाह की तरफ से, क्योंकि नबी जो होते हैं वो मासूम होते हैं, वो अल्लाह के हुक्म का इनकार कर ही नहीं सकता। ठीक है, नबी से कोई गलती अगर होती भी है तो वो गुनाह नहीं होता, अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं होती, बल्कि वो ज्यादा से ज्यादा खिलाफ उला, लेस प्रेफर्ड को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया होता है मोर प्रेफर्ड के मुकाबले में। ठीक है, तो ये गुनाह नहीं होता, लेकिन एक उनके मुकाम और मर्तबे के हिसाब से ये भी एक नापसंदीदा बात होती है, तो उसके ऊपर फिर अल्लाह ताला की तरफ से महबूबाना तंबी आ जाती है। इसके बहुत सारे वाकयात मौजूद हैं नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी से लेकर के दूसरे अंबिया की जिंदगी के भी। ठीक है, हत्ता के हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की जिंदगी के भी, का जो वाकया है मछली के पेट में जाने का, वो भी गुनाह नहीं किया था उन्होंने, वो भी खिलाफ ही ओला उनसे काम हुआ था। ठीक है, और भी बहुत सारे दूसरे मामलात हैं। तो नबी होने की वजह से हारून अलैहिस्सलाम तो मासूम थे और उनका तरीके हक पर कायम रहना यकीनी था, बाकी ये दोनों सरदार मासूम भी नहीं थे। क्यों? इसलिए कि ये तो वली थे, ये नबी तो नहीं थे, इनको अभी नबूवत तो नहीं मिली थी। तो वली जो होता है वो मासूम नहीं होता, वो क्या होता है, वो महफूज होता है। महफूज, महफूज का मतलब क्या होता है कि वो शैतान के नरगे में आ जाने से, मुकम्मल तौर पर नरगे में आ जाने से महफूज होता है, अल्लाह ताला उसको हिफाजत अता फरमा देते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि उससे कभी एहयानन, यानी किसी भी सिचुएशन में फंस करके या किसी गलती की वजह से या बशर होने की कमजोरी की वजह से उससे गुनाह हो सकता है, वली से गुनाह हो सकता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि उसने कुर्बानियां दी होती हैं, मुजाहिदे किए होते हैं और अल्लाह ताला को राजी कर लिया होता है, वो विलायत के दर्जे पे पहुंच चुका होता है, तो इस वजह से अल्लाह ताला उसको गुनाह के ऊपर जमने नहीं देते, बल्कि तौबा की तौफीक दे देते हैं और वो गुनाह से तौबा करके उसमें से निकल आता है। शैतान के नरगे में फंस जाने का मतलब ये होता है कि गुनाह भी किया और तौबा भी नहीं की, गुनाह भी किया और तौबा भी नहीं की। तो वली ऐसा नहीं होता। जब वली के बारे में अल्लाह ताला ने जो फरमाया ना, इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, कि मेरे खास बंदे जो होते हैं ना, इबादी में बहुत ही खास बंदों का जिक्र है, तो तेरा उनके ऊपर जोर नहीं चलेगा ऐ शैतान। जोर न चलने का मतलब यही है कि तुम उनको तौबा से महरूम नहीं कर सकोगे, तौबा वो कर लेंगे अगर उनसे गुनाह हो गया। तो ये है महफूज की तारीफ। ठीक है, लेकिन नबी तो महफूज ही नहीं, नबी तो मासूम होते हैं। अच्छा, इस इंतहाई गम गुस्से की आलम के आलम में सिर्फ उसका जिक्र किया जिसका हक पर कायम रहना यकीनी था, ठीक है ना। तो उसकी लॉजिकल रीजन बता दिए कि भाई वो भी मासूम थे और नबी मूसा अलैहिस्सलाम खुद भी मासूम थे, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी नबूवत के बारे में कोई शक कोई थोड़ी था कि पता नहीं मैं नबी हूं कि मैं नबी नहीं हूं। नहीं, 100% उनको पता था कि वो नबी हैं, तो उनको अपना हक पे कायम रहना भी पता था कि भाई नबी होने की वजह से मैं भी गुनाह नहीं कर सकता, अल्लाह के हुक्म को नहीं खिलाफ नहीं कर सकता। तो फरमाया कि इस इजहार के साथ कि मुझे अपनी जान और अपने भाई के सिवा किसी पर इख्तियार नहीं है, ठीक है। अब यहां पर ये बात यहां तक सबको क्लियर है, किसी को कोई सवाल कोई इश्काल हो तो पूछ लीजिए चैट विंडो पे लिख करके, ठीक है। लेकिन अब यहां पर हम आपसे एक सवाल करते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम के जो ये अल्फाज हैं, क्या इसके ऊपर कोई तालिबे इल्माना इश्काल किया जा सकता है? कोई आपके जहन में एक बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ नॉलेज तालिबे इल्माना इश्काल जहन में आता है? इन्नी ला अमलिकु इल्ला नफ्सी व अखी, तो अगर आता है तो बताएं। यानी एतराज तो नहीं, एतराज तो कुरान मजीद है, ये अल्लाह के नबी की बात हो रही है तो एतराज तो हमारे ईमान का ही मसला बन जाएगा, लेकिन एक तालिब इल्माना इश्काल कि भाई ऐसा उन्होंने क्यों किया जबकि, तो ये हम आपसे पूछ रहे हैं, अगर आपके जहन में कोई आता है तो बता दे, वरना हमारे जहन में तो आया था। एनीवन? जी, किसी के ध्यान में कोई सवाल नहीं, वो ये कि हमारी जात भी तो अल्लाह ही की है मिल्कियत, हमारी जात भी तो अल्लाह की ही मिल्कियत है, तो ये तो कोई इश्काल तो ना हुआ, इश्काल समझते हैं ना तो? हाँ ये है, ठीक है, कि इसमें दावा नजर आता है, ठीक है। अगरचे के हजरत हारून नबी थे लेकिन फिर भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कंट्रोल में ना थे, ठीक है। तो वो उसकी जो तौजीह तो हजरत ने बयान कर दी ना कि भाई मासूम थे, ठीक है, तो मासूमियत को देखते हुए फिर जो है वो उन्होंने कलमा कह दिया अपने बारे में भी और हारून अलैहिस्सलाम के बारे में भी, और फैक्चुअली स्पीकिंग तो बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, ठीक है। लेकिन इश्काल क्या बनता है कि ये अल्फाज जो उन्होंने इस्तेमाल किया ना, ये अल्फाज जो है वो दावे वाले अल्फाज हैं, क्लेम वाले अल्फाज है, ठीक है ना। जबकि इसके बरक्स हम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया पढ़ते हैं, ठीक है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आखिर में क्या फरमाया था, तवफनी मुस्लिम वालहिकनी बिस्सालिहीन, कि ए अल्लाह आप मुझे इस्लाम पर मौत अता फरमाइएगा और मुझे सालिहीन के साथ जमा फरमा दीजिएगा, है ना भाई। वो भी तो अल्लाह के नबी थे ना, यूसुफ अलैहिस्सलाम, ठीक है ना। क्या उनको अपना मासूम होना नहीं पता था? क्या उनको अपनी नबूवत के ऊपर कोई शक था? हरगिज नहीं, ठीक है। तो वो ऐसी बात क्यों कर रहे हैं कि तवफ्फनी मुस्लिम हो, कि अल्लाह कहीं ऐसा ना हो कि मरते वक्त जो है ना मैं ईमान से महरूम कर दिया जाऊं और मैं मुसलमान होके ना मरूं, तो अल्लाह आप मुझे मुसलमान वाली मौत अता फरमाइए। उन्होंने ऐसी बात क्यों कही? और मूसा अलैहिस्सलाम ऐसे दावे वाली बात क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो नफ्स पर भी तो इख्तियार नहीं होता कभी, जैसे किसी और ने यहाँ पे डायरेक्ट मैसेज में लिखा है कि अपने नफ्स पर भी तो कभी इख्तियार नहीं होता, या इंसान जो है उस तरह की बात अवॉइड करता है, ठीक है। तो उसका जवाब भी बहुत आसान सा है कि भाई कभी किसी सिचुएशन की वजह से, यानी ऐसे जब हालात होते हैं ना, गैर मवाफिक हालात, ठीक है, या कोई चीज जो होती है वो या तो बहुत मुश्किल हालात चल रहे हैं या हालात जो है वो एटलीस्ट नॉर्मल हालात या अच्छे हालात नहीं चल रहे, ठीक है। तो जब अच्छे हालात नहीं होते हैं ना, तो उस वक्त जो है ना वो इंसान उससे मरऊब होकर के कभी कोई ऐसा जुमला कह देता है जो के खिलाफे ओला हो, ठीक है। हत्ता के नबी के दर्जे के लोग भी, वो भी कभी कोई खिलाफे ओला बात कर जाते, ठीक है ना, हालात की वजह से, हालात का इतना असर होता है, ठीक है। इसकी क्या मिसाल, इसकी मिसाल पहले तो वही यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिसाल, ठीक है, कि यूसुफ अलैहिस्सलाम हालात से मरऊब होकर के उन्होंने कोई दावे वाला कलमा क्यों नहीं कहा? क्यों? इसलिए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो हालात थे वो एब्सोल्यूटली उनके हक में थे, उनको अल्लाह ताला ने फतह अता फरमा दी थी, उनको जो है वो बादशाहत भी थी, दुनियावी नेमतें भी अता फरमा दी थी, दीनी नेमतें भी अता फरमा दी थी, अपने भाइयों के खिलाफ जो है वो उनको सुरखरू भी फरमा दिया था। तो एवरीथिंग वॉज इन हिज फेवर। तो उन्होंने कितनी प्यारी बात करी, तवफनी मुस्लिमों वालहिकनी बिस्सालिहीन, जबकि इसके बरक्स जो है मूसा अलैहिस्सलाम के ये हालात देखें तो कितने मुश्किल तरीन हालात थे। ठीक है, फिजिकल मुश्किल खाली नहीं थी बल्कि यानी नफसियाती मुश्किलात थी कि जिन लोगों के लिए उन्होंने सब कुछ किया उन्होंने उनको नाउज बिल्ला हमारी जुबान में स्लैंग में कहते हैं ठेंगा दिखा दिया। ठीक है, तो दिल पे कितना कर्ब और अजियत वाला मामला था। ठीक है, तो इस वक्त भी उन्होंने फैक्चुअली तो बात गलत नहीं करी लेकिन एक ऐसा जुमला कह दिया जो कि आम हालात में नहीं कहा जाता। हत्ता के नबी तो नबी, आम हालात में तो कोई अल्लाह का वली ऐसी बात नहीं करता बल्कि एक आम मुसलमान भी ऐसी बात नहीं करता। ठीक है, दावे वाली बात। ठीक, लेकिन हालात इंसान के ऊपर असर करते हैं। ठीक है, इसकी एक और मिसाल के हमारे हजरत के बयान से हमने ये तो सुनी थी पहली दफा जब सुनी थी। ठीक है, के जकरिया अलैहिस्सलाम। ठीक है, जकरिया अलैहिस्सलाम को हजरत मरियम की जो है वो कफालत सौंप दी गई और मरियम अलैहिस्सलाम को उन्होंने जो है ना वो एक क्वार्टर के अंदर रखा, वो बैतुल मुकद्दस के अंदर, वो वहां पे इबादत किया करती थी। ठीक है, अब जकरिया अलैहिस्सलाम जो है वो मरियम अलैहिस्सलाम के सामने के पास जब भी आते थे ना कुल्लमा दखला अलैहा, ठीक है, यानी मरियम अलैहिस्सलाम के पास कुल्लमा दखला अलैहा जकरिया महराब, महराब में दाखिल होते थे जहां पे ये रहती थी मरियम, तो वहां पे क्या देखते थे, वजदा इंदहा रिस्का, उनके पास जो है वो रिस्क देखते थे, यानी बड़े बड़े फल आए हुए हैं, एक से एक जो है वो खाने पीने की चीजें पड़ी हुई हैं। तो फरमाया काला या मरियम अन्ना लकी हादा, ए मरियम ये कहां से आई तुम्हारे पास, है ना, मुझे पता है कि कोई तुम्हें ला ला करके तो नहीं देता और मैं तुम्हारा कफीर हूं, मैं तो तुम्हें हरगिज ला करके नहीं देता ये सारी चीजें, ये कहां से आ गई। अब देखें मरियम अलैहिस्सलाम जो कि नबी नहीं है, ठीक है ना, और वो एक बच्ची है, एक औरत जात भी, उम्र भी कोई ज्यादा शायद उस वक्त नहीं थी उनकी, फरमाती हैं कालत हुआ मिन इंदिल्लाह, कहती हैं कि ये तो अल्लाह की तरफ से है, इन्ना अल्लाह यरज़ुकु मन यशाउ बगैर हिसाब, बेशक अल्लाह ताला जिसको चाहता है वो बगैर हिसाब रिस्क देता है। तो उधर अल्लाह के नबी हैं, इधर जो है वो गैर नबियां हैं और वो भी औरत जात जो कमजोर वैसे भी होती है। ठीक है, लेकिन ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं ये कौन कर रहा है, ये वो औरत कर रही है जो कि नबी भी नहीं है, और जो अल्लाह के वली जो अल्लाह के नबी हैं जिसके पास वलायत पहले से ही होती है वो क्या ऐसी बात कर रहे हैं कि ये कैसे हो गया है, क्या उनको पता नहीं था कि रिस्क अल्लाह ताला की तरफ से होता है, वो जिसको चाहे दे सकता है जहां चाहे दे सकता है। लेकिन माहौल से आए थे और उनके ऊपर भी थोड़ी सी उस वक्त एक टेंशन थी कि औलाद नहीं है। ठीक है, तो माहौल का असर हुआ, और ये किस माहौल में थी, ये इबादत के माहौल में थी, ये मेहराब के माहौल में थी, ये मस्जिद के माहौल में थी, तो इनके ऊपर क्या असर हुआ कि इनको जो है ना वो हादा मिन इंदिल्ला। ठीक है, तो ऐसे होता है। नबी अलैहिस्सलाम के साथ भी क्या हुआ कि जब नबी अलैहिस्सलाम उस सिचुएशन में थे कि जबकि कुरैश के जो है ना बड़े बड़े सरदार जो है वो आपस वसलम के यानी नाक पे दम किया के रखे हुए थे और बात मान करके नहीं दे रहे थे, तो कितनी मुश्किल में हालात थे नबी अलैहिस्सलाम के उस वक्त जो है ना, वो कुछ लोग आए आपसे उनके पास पूछने के लिए, बात करने के लिए, तो आपसे उनसे बातें कर रहे थे कुरैश के सरदारों से, और उधर से जो है वो नाबीना साहबी आ गए, तो नाबीना साहबी को देख करके नबी अलैहिस्सलाम ने अबसा वतवल्ला अंजाअहुल अअमा। ठीक है, तो हालात का जो है ना वो ऐसे इंसान के ऊपर भी असर होता है, लेकिन नबी जो है वो फिर भी गुनाह नहीं करता, ज्यादा से ज्यादा खिलाफ उला कोई काम होता है और फिर उसके ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से महबूबाना तंबीह भी आ जाती है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ठीक है, अच्छा इन्होंने क्या लिखा कि क्या ये भी इसी तरह है कि गजवे बदर से पहले रात को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना कि अगर अल्लाह की मदद ना आई तो अल्लाह का नाम लेने वाला कोई ना रहेगा, वो भी नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर एक बहुत मुश्किल सिचुएशन थी, तो उन्होंने अपने आप को तमाम मुसलमानों में शामिल करके कि अगर ये जमात मिट गई तो अल्लाह का आखिरी नबी भी इस दुनिया से चला जाएगा, फिर फिर इस दुनिया के अंदर ए अल्लाह तेरा नाम लेने वाला कोई ना रहेगा। ठीक है, तो ये भी सिचुएशन के हिसाब से नबी सलाम ने ऐसी दुआ मांगी। हालांकि अल्लाह ताला के वादे और अल्लाह ताला की बशारतें सब अपनी जगह पर, तो क्या ये पर्सनैलिटी की वजह से हो सकता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पर्सनैलिटी जलाली थी? नहीं, अभी तो आपके सामने इतनी सारी मिसालें दी हैं, हर बंदे को आप जलाली तो नहीं कह सकते ना। जकरिया अलैहिस्सलाम की बात हो गई, नबी अलैहिस्सलाम जो जमाली जमाली नबी अलैहिस्सलाम तो जमाली थे ना, तो नबी अलैहिस्सलाम ने भी सिचुएशन के अंदर ऐसी बात करी, और जकरिया अलैहिस्सलाम का भी आया, और फिर हजरत क्या नाम है यूनुस अलैहिस्सलाम का भी मामला हुआ कि छोड़ छाड़ करके जो है वो अपने कौम को निकल गए। ठीक है, हाँ, तो बशर होता है ना, जैसे इन्होंने लिखा बशरियत, तो भाई नबी जो होता है वो बहरहाल बशर होता है। ठीक है, उसका शर जो है वो बहुत अल्लाह ताला ने मिटा दिया होता है, लेकिन फिर भी बशर होने के तकाज़े उसके अंदर ये चीज होती है कि माहौल का असर उसके ऊपर आता है। ठीक है, तो बहरहाल ये बात जो है वो करके हम आगे बढ़ते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये दुआ फरमाई, फफरुक बैनना व बैनल कौमिल फासिकीन, यानी हम दोनों और हमारी कौम के दरमियान आप ही फैसला फरमा दीजिए। इस दुआ का हासिल हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की तफसीर के मुताबिक ये था कि ये लोग जिस सजा के मुस्तहिक हैं उनको वो सजा दे दी जाए, और हम दोनों जिस सूरत हाल के मुस्तहिक हैं हमको वो अता कर दी जाए। ठीक है, वो अता फरमा दिया जाए। तो फफरुक बैनना, तो वो उनके मामला उनके साथ और हमारा हमारे साथ, तो इस तरह की दुआ मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमा दी। अल्लाह ताला ने इस दुआ को इस तरह कबूल फरमाया कि इरशाद हुआ कि फ इन्नहा मुहर्रमतुन अलैहिम 40 सना, यानी अल्लाह ताला ने अपने इल्म अजरी को इस्तेमाल फरमाते हुए 40 साल का बता भी दिया। ठीक है, यती हूं ना फिलहाल, यानी ये फिरते रहेंगे जमीन के अंदर जहां पर ये हैं। फरमाया कि यानी मुल्क शाम की जमीन उन पर 40 साल के लिए हराम करार दे दी गई, अब अगर वो वहां जाना भी चाहें तो नहीं जा सकेंगे। और फिर ये नहीं कि मुल्क शाम ना जा सकेंगे, बल्कि वो अगर अपने वतन मिस्र की तरफ लौटना चाहेंगे तो वहां भी ना जा सकेंगे, बल्कि इस मैदान में उनको नजरबंद कर दिया जाए। ठीक है, नजरबंद करने के लिए लोग जो है वो बड़ी बड़ी सलाखों के पीछे किसी को बंद करते हैं और दीवारों के पीछे बंद करते हैं, अल्लाह ताला को इन चीजों की हाजत नहीं है। ठीक है, तो वही फरमाते हैं कि खुदाए अज्जा वजल की सजा, इस सजाओं के लिए ना पुलिस और ना उनकी हथकड़ियां शर्त हैं, और ना जेल खाने की मजबूत दीवारें और आहनी दरवाजे, बल्कि जब वो किसी को महसूर व नजरबंद करना चाहें तो खुले मैदान में भी कैद कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए कि अल्लाह ताला सिर्फ मैदान का खालिक तो नहीं है ना, जेल खाने का खालिक तो नहीं है, अल्लाह ताला उस बंदे का भी तो खालिक है ना। ठीक है, बल्कि तो सबब जाहिर है कि भाई सारी कायनात उसी की मखलूक और महकूम है। जब कायनात को किसी की कैद का हुक्म हो जाता है तो सारी हवा और फिजा और जमीन और मकान उसके लिए जेलर बन जाते हैं। ठीक है, अब ये जो है ना सारी के सारी एक्सटर्नल फैक्टर्स, हत्ता के इंसान के अपने जो जो चीजें हैं ना, उसके अपने बदन की जो चीजें, वो उसके खिलाफ हो जाती। ठीक है, जब भी तो कयामत के दिन तो जो गवाही देंगे तो उस काफिर के अपने हाथ पैर और जुबान और आंख और नाक और हर चीज उसके खिलाफ गवाही देगी। ठीक है, तो यानी वो गर्म बच्चों से भी बात हो रही थी, पाकिस्तान स्टडीज में पढ़ाया जाता है ना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस, वो गांधी गांधी ने तहरीक चलाई थी कि ब्रिटिश की कोई बात नहीं मानेंगे, सिविल डिसोबीडियंस। ठीक है, तो इंसान के अपने आजाद जो है ना वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू कर देते हैं। इसी दुनिया के अंदर कोई चीज कोऑपरेट नहीं कर रही होती, इसी के तो हम पर बीमारी का नाम देते हैं। बीमारी क्या है? आपसे कोऑपरेट नहीं कर रहा आपका, आपको फलाना आपका फेफड़ा कोऑपरेट नहीं कर रहा, आपका लिवर कोऑपरेट ही नहीं कर रहा, आपका हार्ट आपके साथ कोऑपरेट ही नहीं कर रहा। ठीक है ना, जैसे चाहते हैं कि वो ऐसे फंक्शन करे वो वैसे फंक्शन नहीं कर रहा, आंख फंक्शन नहीं कर रही। ठीक है, तो अल्लाह ताला चाहे तो ऐसे करवा देते हैं। तो फरमाए के साफ वो बादो आब आदश बंद अंध बा मनो तू मुर्दा बा हक जिंदा। ठीक है, खाक हो या बाद हो, मट्टी हो या हवा हो या पानी हो, आप या आग हो आतिश, बंदा अंध को नहीं मानता मतलब। ठीक है, आगे फरमाते हैं बा मन व तू मुर्दा, अपने मन के साथ जो है ना तो तू मुर्दा है, बाहक जिंदा अंत, अल्लाह के साथ तू जिंदा है, अपने नफ्स परस्ती के साथ तू मुर्दा है और अल्लाह के साथ तू जिंदा है। ठीक है, हर चीज जो है ना, ये चीजें ये आपके फायदे की हैं जब आप अल्लाह के साथ हैं। ठीक है, जब अल्लाह आपके साथ है बल्कि, ठीक है, और हर चीज जो है वो नुकसान की है जब अल्लाह आपके साथ नहीं है। काश कि हमें बात समझ में आ जाए, लेकिन शैतान और नफ्स जो है ना, वो हमें पहले तो सुनने ही नहीं देता, और अगर सुनते भी हैं तो हम क्लास बंद तो बात भी बंद। ठीक है, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह मुझे ये हकीकत समझा दीजिए और इसके मुताबिक मेरी जिंदगी को बना दीजिए, तब बात बनेगी असल, तब हमारा अपना फायदा हो जाएगा। किसी और का क्या फायदा, हमारा अपना फायदा हो जाएगा इसके अंदर ना। भाई अल्लाह है तो सब कुछ है, अल्लाह नहीं है तो कुछ भी नहीं है। चाहे कुछ कर लो, कितनी साइंस और टेक्नोलॉजी और अकलमंदी और मेहनत और मुजाहिदे और कुछ कर लो, अगर अल्लाह साथ नहीं है तो कुछ भी नहीं। चुनाचे ये मुख्तसर सा मैदान जो मिस्र और बैतुल मुकद्दस के दरमियान है, जिसकी पैमाइश हजरत मुकातिल की तफसीर के मुताबिक 30 फरसख लंबाई और 9 फरसख चौड़ाई है। 1 फरसख अगर 3 मील का करार दिया जाए तो 30 × 3 90 मील टूल और 27 मील के अरज, यानी लेंथ और ब्रेथ 90 × 27 माइल्स टोटल ये रकबा बनता है। और बाज रिवायात के मुताबिक सिर्फ 30 मील जरफ 18 मील 30 × 18 माइल्स का रकबा बनता है। इतने छोटे से इलाके में उनको ऐसे फंसा के रख दिया अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला ने इस पूरी कौम को, जिसकी तादाद हजरत मुकातल के बयान के मुताबिक 6 लाख नफूस थी, 600,000, इस मुख्तसर से खुले मैदानी रकबे के अंदर इस तरह कैद कर दिया कि 40 साल मुसलसल इस तगोदौ में रहे कि किसी तरह इस मैदान से निकलकर मिस्र वापस चले जाएं या आगे बढ़कर बैतुल मुकद्दस पर पहुंच जाएं। मगर होता यह था कि सारे दिन के सफर के बाद जब शाम होती तो ये मालूम होता कि फिर फिराकर वो उसी मुकाम पर पहुंच गए जहां से सुबह चले थे। ये किस्से कहानियां हम पढ़ते हैं लेकिन हमें फायदा नहीं होता, क्योंकि हम इनको किस्से कहानियां समझ के पढ़ रहे हैं। लेकिन काश कि हम इनको हकीकत समझ करके और इन पर एतमाद और सच मान करके इनको अगर हम पढ़ें और सुने ना, तो हमारी जिंदगी बदल जाए और हर मसला हमारा हल हो जाए, हर मसला हमारा। ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला हकीकत में हमसे यही चाहते हैं। अल्लाह ताला चाहते हैं तुम सिर्फ मेरी बात को सुनो तो सही, तू मेरी सुन तो सही। जैसे हम किसी को कहते हैं ना, तू मेरी सुन तो सही, बाकी मैं तेरा हर मसला खुद हल करूंगा, मैं तेरा हर मसला खुद हल करूंगा, तू मेरी सुन तो ले कम से कम। लेकिन हम सुन के नहीं देते, हम सुन के नहीं देते पता। ठीक है, अल्लाह की आवाज ही, वो तो भाई कयामत के दिन आएगी जब आएगी, दुनिया में थोड़ी आने वाली है अल्लाह की आवाज, ऐसे ही बस नाथसों की आवाज ही सुननी पड़ेगी अल्लाह के बातों को सुनने के लिए। लेकिन हमारा ये अनानियत होती है कि नहीं, हम क्यों सुने भाई, क्यों माने इसकी बात, क्यों माने। तो ये होता है, ठीक है ना। अब हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की किताब का हमने पिछली क्लास में भी जिक्र किया था, इस्लाम और हालात हाजरा। ठीक है, ये तो हालात बईदा है ना, जो कि आज से 3,000 साल पहले हुए थे, या जो है वो 2,000 साल पहले हुए थे। आप खाली आज से 40-50 साल पहले के वाकयात पढ़ लो, ठीक है, कि दुनिया में कैसे अल्लाह ताला ने इन्हीं बातों को रिपीट किया है, इन्हीं कामों को रिपीट किया है, कि देखो ऐसे घुमा देते हैं अल्लाह ताला, जब अल्लाह के हुक्मों की नाफरमानी होती सामने मौजूद है। तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने अपनी इसी किताब के अंदर तुर्की के हालात भी लिखे, कि तुर्की वालों ने जो है वो जिद्दत पसंदी के मोहब्बत में आकर के, जिद्दत की मोहब्बत यानी जिद्दत पसंदी, मॉडर्नाइजेशन उसकी मोहब्बत में आकर के जो इन्होंने अपना बेड़ा गर्क किया, तो अल्लाह ताला ने उनके ऊपर जो है वो यूरोपियंस को मुसल्लत किया, कमाल अता तुर्क के की शक्ल में यूरोपियन ताकतों को मुसल्लत किया। उन्होंने बड़ी जो है वो साइंसी तरक्की हासिल करने की कोशिश करी, लेकिन कख हाथ नहीं आया उनके, यानी जो उनके पहले अच्छे हालात थे सल्तनत उस्मानिया के तहत, उनसे ज्यादा बेहतर हालात तो होना दूर की बात, उनके जैसे हालात भी नहीं बन सके इनके, तुर्कों के। ठीक है, यही मसला जो हमारा पाकिस्तान का भी, कि दीन के इस्लाम के नाम पे ऊपर जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे जो है वो ले लिया, लेकिन 75 साल गुजर गए अभी भी कुछ हाथ नहीं आया, ठीक है ना। वो बताने लगे कि कराची के अंदर बड़ी ऊंची ऊंची बड़ी जबरदस्त लग्जरी बिल्डिंग्स बनी है, वो बिल्कुल बीच के ऊपर ना, तो उस वहां पे सारी फैसिलिटीज मौजूद हैं, लेकिन अभी किसी ने बताया वहां भी लाइट नहीं आती, वहां भी लाइट गई भी होती है, ठीक है। तो इतना जो आर्टिफिशियल लाइटिंग का जमाना है जिसमें कि 24 24 घंटे पूरी दुनिया के अंदर लाइटिंग हो रही है, तुम्हारे मुल्क के अंदर जो है वो इतने लग्जरी बिल्डिंग्स के अंदर भी जो है वो लाइट तक नहीं है, और दूसरे मसले अपनी जगह पे, ठीक है। कुछ जगहों पे सड़कें बना करके बड़े खुश हो रहे हैं कि जी हमने तरक्की कर ली, घरों के हालात नहीं पता है घरों के अंदर क्या हो रहा है वहां पर, और बाकी जगहों पर जो है सड़कें ही नहीं हो रही, कुछ भी नहीं बन करके दे रहा। तो वही जिधर से चलते हैं ना उधर ही इंसान घूमता रहता है, क्योंकि अल्लाह घुमा रहा होता है, लेकिन हम तौबा करने से जो है ना वो हम बिल्कुल उस तरफ सोच ही नहीं रहे होते। बहरहाल अल्लाह ताला कोई वो नहीं है कि अल्लाह ताला के पास टाइम कम है ना, कि भाई चलो तौबा नहीं कर रहे, चलो यार तो टाइम हम खत्म होने वाला है, तो जल्दी जल्दी ऐसे ही इनको बस कामयाब कर देता हूँ मैं, क्योंकि अब जो है वो मैच का टाइम खत्म हो रहा है, तो चलो मैं ऐसी मेडल दे देता हूँ उनको। नहीं, अल्लाह ताला के पास टाइम की कोई कमी नहीं है, नहीं करोगे कोई बात नहीं, चलते रहो उसी तरीके से, मरते रहो रुकते रहो उसी तरीके से, जैसे कि इनके साथ हुआ। तो उलमाए तफसीर ने फरमाया कि अल्लाह जल्ला शानो किसी कौम को जो सजा देते हैं ना वो उनके आमाले बद की मुनासबत से होती है, ठीक है। हजरत जी क्या रहा फरमाया करते थे कि अल जजा मिन जिन्स अल अमल, कि जैसा अमल होता है ना जजा उसी की जिन्स से मिलती है, उसी की तरह की जजा मिलती है, ठीक है। तो इनका भी यही मामला हुआ कि इस नाफरमान कौम ने चूंकि ये कलमा बोला था ना कि इन्ना हाहुना कायदून, यानी हम तो यहीं रहेंगे बैठे रहेंगे यहीं पर, बैठने रहने का मतलब ये को थोड़ी था कि बैठे रहेंगे हम खड़े नहीं होंगे, ये मतलब नहीं था उनका। हम उनका मतलब था कि हम बस यहीं रहेंगे, अल्लाह ताला ने कहा चलो रहो तुम यहीं, है ना, तुमने कहा था ना हम यहीं रहेंगे तो रहो यहीं पर। अब वो निकलने की कोशिश भी करते थे ना तो निकल नहीं पाते थे, वहीं वापस आ जाते थे। इसको कहते हैं अल जजाउ मिन जिनसिल अमल, लिख लिया ना सबने इंशाल्लाह, पढ़ते रहा करेंगे तो फिर फायदा होगा इंशाल्लाह, अल जजाउ मिन जिनसिल अमल। तो अल्लाह ताला ने उनको इस सजा में 40 साल तक के लिए वही कैद कर दिया जहां उन्होंने कहा था हम इधर ही रहेंगे, उधर ही कैद कर दिया। तारीखी रिवायात इसमें मुख्तलिफ हैं कि इस 40 साल के अरसे में बनी इसराइल की मौजूदा नस्ल जिसने नाफरमानी की थी सभी फिना हो गए, यानी सब मर गए, और उनकी अगली नस्ल बाकी रह गई जो इस 40 साल कैद से निजात पाने के बाद बैतुल मुकद्दस में दाखिल हुई, या कुछ तारीखी रवायात में यह है कि इनमें से भी कुछ, यानी प्रीवियस जनरेशन में से भी कुछ लोग बाकी थे। बहरहाल यानी वो भी थोड़े बाकी थे, लेकिन नई नस्ल जो है वो जवान हो गई, अब उन्होंने फिर बात मानी। तो ये मुख्तलिफ तारीखी रवायात है, हदीस में इसका जिक्र नहीं है, तो इस वजह से वी आर नॉट श्योर कि ये हुआ या वो हुआ। बहरहाल कुरान करीम ने एक तो ये वादा किया था ना कि कतबुल्लाहु लकुम, यानी मुल्क शाम बनी इसराइल के हिस्से में लिख दिया है, वो वादा पूरा होना जरूरी था, अल्लाह ताला ने तो अपना वादा पूरा करना होता है, टाइम लिमिट कोई नहीं है, लेकिन वादा पक्का, अगर कर दिया वादा सो वो पूरा होना, कि कौम बनी इसराइल इस मुल्क पर काबिज व मुसल्लत हो अर्ज मुकद्दस पर, मगर बनी इसराइल के मौजूदा अफराद नाफरमानी करके इस इनाम खुदाबंदी से एराज किया तो इनको यह सजा मिल गई कि मुहर्रमतुन अलैहिम 40 सना, यानी 40 साल तक वो अर्ज मुकद्दसा फतह करने से महरूम कर दिए गए। फिर उनकी नस्ल में जो लोग पैदा हुए उनके हाथों ये मुल्क फतह हुआ और अल्लाह ताला का वादा पूरा, ठीक है। तो अल्लाह ताला जो है ना वो अबू जहल के घर के अंदर अकरमा रजी अल्लाह ताला अनहु पैदा फरमा दे, अल्लाह ताला के लिए क्या मुश्किल काम है, ठीक है। तो इनकी नस्ल के अंदर अल्लाह ताला ने नेक लोग पैदा फरमा दिए, तो उन्होंने जो है उनकी बात मानी। बहरहाल तो हम ये ना समझा करें कि बस ये ना बस हम तो बख्शे बख्शाए हैं, हम तो कामयाब। अच्छा उसकी भी बड़ी जबरदस्त तफसीर आगे लिखी है, ठीक है, कि हम जो अपने जोम में मुब्तला होते हैं ना कि जी हमारे साथ अल्लाह की मदद है, हमारे साथ अल्लाह की मदद है, हालांकि हरकतें देखो तो अमाल तो बुरे होने की क्या बात है, अकायद ही बुरे हैं, राइट, अमाल तो क्या अकायद ही बुरे हैं, फिर भी समझते हैं कि जी हमारे साथ तो अल्लाह की मदद है, तो ये भी ऐसे ही समझते थे, ठीक है। तो फरमाते हैं कि इस वादिय तीह में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम भी अपने कौम के साथ थे, मगर ये वादी उनके लिए कैद और सजा थी, और
इन दोनों हजरात के लिए न्यायमाए इलाहिया का मजहर था, यानी इन दोनों के साथ, हालांकि वहीं पर थे, इन दोनों के साथ नेमतें और उन लोगों के लिए सजा। जज़ाकअल्लाह, आपने लिख भी दिया जज़ाउ मिन जिन्से नमत। अच्छा, यही वजह है कि 40 साल दौर जो बनी इसराइल पर मातूब होने का गुजरा, यानी जिसमें बनी इसराइल पर अल्लाह का अदाब हुआ, उसमें भी अल्लाह ताला ने उनको हजरत मूसा व हारून अलैहिस्सलाम की बरकत से तरह तरह की नेमतों से सरफराज हुआ। खुले मैदान की धूप से आजिज आए तो मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से अल्लाह ताला ने उन पर बादलों की छतरी लगा दी। जिस तरफ ये लोग चलते थे, बादल उनके साथ 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 साया फगन होकर चलते थे। प्यास और पानी की किल्लत की शिकायत पेश आती तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक ऐसा पत्थर अता फरमा दिया कि वो हर जगह उनके साथ रहता था। अब जब पानी की जरूरत होती थी तो मूसा अलैहिस्सलाम अपना असा उस पर मारते थे तो 12 चश्मे उसमें से निकल जाते थे, जारी हो जाते थे। भूख की तकलीफ पेश आती तो आसमानी गजा मन सलवा उन पर नाजिल कर दी गई। रात को अंधेरी की शिकायत हुई तो अल्लाह ताला ने रोशनी का एक मीनार उनके लिए खड़ा कर दिया जिसकी रोशनी में ये सब काम करते थे। ठीक है, तो देखें क्या उसूल सामने आया कि ये जो अल्लाह की नेमतें हमें हमारे गुनाहों के बावजूद और अपने बदअकायद के बावजूद हमें मिल रही होती है ना, वो फिर जो हमारे दरमियान चंद अल्लाह के वली होते हैं ना, ये उनकी वजह से मिल रही होती है, ये हमारी वजह से नहीं मिल रही होती है कि अल्लाह हमसे राजी हो गया, अल्लाह हमसे खुश है, इस वजह से जो है कोई बड़ी मुसीबत नहीं आ रही हमारे ऊपर। नहीं, ये उन लोगों की वजह से। वो लोग कौन होते हैं जो कि खुद भी नेकी के ऊपर जमे हुए होते हैं, गुनाहों से बच रहे होते हैं, और वो मुसलेह का काम भी कर रहे होते हैं। मुसलेह यानी वो लोगों को की भी जो है ना, वो इस्लाह की मेहनत करते रहते हैं, अपनी धुन में लगे रहते हैं इस्लाह की मेहनत करने में। उनकी वजह से अल्लाह का अजाब टला हुआ होता है, और कुरान अजीम शान की अपनी आयात इसके ऊपर शायद है कि मुसलिहीन की वजह से, यानी जो साले भी होते हैं और इस्लाह की मेहनत में भी लगे रहते हैं, जब तक वो किसी बस्ती में होते हैं उसके ऊपर अजाब। ये हमारी नेकियों की वजह से, हमारी नेकियां होंगी तो उसकी वजह से होगा ना। तो शैतान धोखेबाज, वो कहते हैं नहीं, तुम्हारी वजह से जो है वो ये सारी नेमतें आई हुई है, तुम्हारी वजह से अजाब डाला हुआ है। भाई ये तो शरीयत की कसौटी पे तोला जाएगा ना, कि ये अपने जोम और अपने गुमान की वजह से नहीं होता कुछ ना। वरना गुमान में तो मैं अपने आप को समझूं कि मैं आज से बादशाह बन गया हूं तो मैं बन जाऊंगा बादशाह है, मैं आज से समझूं कि मैं जन्नत में पहुंच गया हूं तो मैं पहुंच जाऊंगा जन्नत में। गुमान कर लिया भाई, अच्छा गुमान कर लिया अपने बारे में, अल्लाह के बारे में नहीं कि अपने बारे में अच्छा गुमान कर लिया। ठीक है, ये तमाशे जो है वो शैतान करवाता है, और हम जो है वो क्योंकि रहमान के बंदों की सुनते नहीं है, तो इस वजह से जाहिर सी बात है शैतान ही जो है वो हमें सुनाता रहता है अपने किस्से कहानी। बस जल्दी से हम ये पढ़ के मुकम्मल कर लेते ना, ताकि अगली क्लास में अभी शुरू कर सकें। शायद अजान हुई है लेकिन अभी तो टाइम है। गर्ज इस मैदान तीह में सिर्फ मातूब लोग ही ना थे, बल्कि अल्लाह ताला के 2 महबूब पैगंबर और उनके साथ 2 मकबूल बुजुर्ग यूशा बिन नून और कालेब बिन मुकन्ना भी थे। उनके तुफैल में इस कैद व सजा के जमाने में भी ये इनामात उन पर होते रहे, और अल्लाह ताला रहीम और रहमा है। मुमकिन है कि बनी इसराइल के नफराद ने भी इन हालात का मुशाहिदा करने के बाद अपने जुर्म से तौबा कर ली हो, इसके बदले में ये इनामात उनको मिल रहे हैं। ठीक है ना, जब ये सारे जो ऊपर के पैराग्राफ में हमने पढ़ा है, तो इतने सारे जब उन्होंने मुशाहिदात फिर से देखे तो हो सकता है उन्होंने तौबा कर ली, लेकिन कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं है इसके बाद। सही रवायात के मुताबिक इसी 40 साल दौर में अव्वल हजरत हारून अलैहिस्सलाम की वफात हो गई, 3 साल बड़े थे मूसा अलैहिस्सलाम से, और उसके 1 साल या 6 महीने बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात हो गई। उनके बाद हजरत यूशा बिन नून को अल्लाह ताला ने नबी बनाकर नबी बनी इसराइल की हिदायत के लिए मामूर फरमाया, और 40 साल कैद खत्म होने के बाद बनी इसराइल की बाकी मानदा कौम हजरत यूशा बिन नून के क्यादत में जिहाद बैतुल मुकद्दस के लिए रवाना हुई। अल्लाह ताला के वादे के मुताबिक मुल्क शाम उनके हाथों फतह हुआ, और इस मुल्क की नाकाबिले कयास दौलत उनके हाथ। आखिरी आयत में जो इरशाद फरमाया कि फला तअस अलल कौम फासिकीन, यानी इस नाफरमान कौम पर आप तरस ना खाएं, ये इस बिना पर, यानी अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया कि आप इनके ऊपर अफसोस ना करें। तअसा का मतलब वैसे तो अफसोस करना भी आप कर सकते हैं उसका तर्जुमा, और हजरत मुफ्ती शफी ने तर्स खाने के ऊपर से तर्जुमा किया है। ये इस बिना पर कि अम्बिया अलैहिस्सलाम अपनी तबीयत और फितरत से ऐसे होते हैं कि अपनी उम्मत की तकलीफ और परेशानी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर उनको सजा मिले तो ये भी इससे मगमूम मुतासिर होते हैं।
अपने उम्मत के सजाओं से ये भी मुतासर और मगमूम होते हैं। इसलिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी गई कि आप उनकी सजा से दिलगीर हो। ठीक है, अल्लाह ताला हमें अपने दीन की, अपने दीन वालों की, अपने अम्बिया की और अपने अम्बिया के वरसा की, अहलुल्लाह की कदर करने वालों शामिल फरमाए, और हमें उसके मुताबिक अपने आमाल की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए, और हर किस्म की अपनी नाराजगी और अपने बोझ से, अपनी दूरी से, अपनी सजाओं से अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। व आखिर दुआना मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बताया। सलाम
जजाकल्लाह।